प्रातः क्लास चल रहा था, 6/4/1967 गुरुवार को दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। तुम बच्चे कौन बच्चे? तुम बच्चे जो सन्मुख बैठ के सुनते हो सुप्रीम सोल बाप से, तो सबको समझा सकते हो, माना सारी दुनिया हो, चाहे देवात्मय हो चाहे मनुष्यात्मय हो चाहे दैत्य हो, ऐसे तो मुख्य रूप से स्वर्ग की दुनिया में देवताएं देवात्माएं होती हैं और नरक की दुनिया में सब दैत्य बन जाते हैं, दिपी की संतान दैत्य। तो देव हो या दैत्य हो तुम सबको समझा सकते हो, तुम ये नहीं समझा सकते क्या? तुम हो पहली दुनिया के लोग, बीज रूपाताओं की दुनिया के लोग, न्यूट्रन दुनिया के लोग क्या? और ये है जड़ आधार, और इनसे पैदा हुए सारे ये आधार मुक्त दुनिया के लोग, और तीसरी दुनिया वो है जिन जड़ों पर आधारित। जो वृक्ष है उसके तीन हिस्से होते हैं, एक मूल तना जो नीचे से लेके ऊपर तक जाता है, उसकी जड़ें भी नीचे हैं बिल्कुल इसके नीचे सीधी नीचे जाती, दूसरी जड़ें दाईं ओर की और बाईं ओर की, उन जड़ों से ताकत मिलती है वृक्ष की दाईं ओर की टहनियों को धर्मों को और बाईं ओर के टहनियों को धर्मों को। तो चाहे दाईं ओर की टहनियां हो चाहे बाईं ओर की टहनियां हो, चाहे आधार मूर्तों के फॉलोअर्स हो चाहे बीज रूप के फॉलोअर्स हो, तुम सबको समझा सकते हो कि तुम या तो नई दुनिया के मालिक बन सकते हो क्या? तुम सब चाहो तो नई दुनिया के मालिक हो, स्वर्ग के मालिक बन सकते हो, क्योंकि मैं शिव हेवनली गॉड फादर हूं, हेवन की रचना करता हूं, तो तुम सब चाहो तो हेवन के मालिक बन सकते हो। या तो शांति धाम के मालिक बन सकते हो, या दो मुख्य धाम हैं जिनको सब पसंद करते हैं, देवात्मा भी शांति पसंद करती है फिर वो सुख भी पसंद करती है, और जो दैत्य हैं जिन्हें मनुष्य कहा जाता है जिनमें चंचल मन होता है वो शांति पसंद, तो मन बड़ा चंचल चंचलता पैदा करता है, अशांति पैदा कर देता है, तो वो शांति पसंद करती है, क्योंकि आती है दुख की दुनिया में तो हमेशा उनको दुख ही दुख देखने को मिलता है, तो कहते ना आए अभी ये दुनिया ना होती तो अच्छी, उन्होंने वो दुनिया देखी ही नहीं सुख की दुनिया, तो कहते भाई ये हमारा दुनिया ये नहीं चाहिए, हमें कोई सुख नहीं चाहिए, हमें तो शांति चाहिए, तो उन्हें शांति ही अच्छा लगती। खैर जो भी हो, सुखदाम को पसंद करने वाले हों तो सुखदाम के मालिक बन सकते हैं, तो भगवान के भी मालिक बन सकते हैं, नंबर वार भी बन सकते हैं, और अव्वल नंबर बनना चाहे तो अव्वल नंबर भी मालिक बन सकते हैं। ऐसे ही शांति धाम के भी मालिक बन सकते हैं। अव्वल नंबर में शांति धाम के मालिक बनना चाहो तो अव्वल नंबर में बन सकते हैं। और फिर क्योंकि तुम ही तो बच्चे हो ना, क्या मेरे बच्चे तुम हो, शिव के बच्चे तुम असली हो, आत्मिक स्थिति में रहने वाले, शिव सदा आत्मिक स्थिति में रहता है ना, स्वयं स्थिति में, तो तुम मेरे बच्चे हो, तुम माने वो बीज रूप आत्मा है, बीज रूप स्टेज में ये शरीर है ना, ये वृक्ष है, और बिंदु आत्मा बीज है, बीज निकलता है, निकलता है बीज में से निकलता है, तो कैसे माँ के पेट में पहले जड़ शरीर होता है या बीज आत्मा होती है, पहले तो जड़ शरीर तैयार होता है ना, और जड़ शरीर का बीज कहाँ से आया, देहधारी बात है, देह अभिमानी, उससे वो देह का बीज आया, लेकिन वो देह पहले या देह से भी पहले वो आत्मा है जिसमें जन्म जन्मांतर के संस्कार भरते हैं, जो आत्मा का देह है उसके संस्कारों के अनुसार माँ के पेट में 4-5 महीने पहले से ही तैयार होने लगता है, तो आत्मा पहले या शरीर पहले है, आत्मा पहले, वो आत्मा जब माँ के पेट में 4-5 साल का वो बच्चा निर्जीव तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसने जैसे जैसे कर्म किए होंगे वैसा ही बच्चा तैयार होगा, क्या आंख से दुष्कर्म किया होगा, बहुत बहुतों को फंसाया होगा, तो आंख से काला पैदा होगा, बहुत लात है क्या, लात चलाई होगी, तो टांग से लंगड़ा पैदा होगा, ऐसा होता है ना, तो ये पूर्वजन्म के संस्कार जो देह में आ गए कहां से आए, आत्मा से आए, वो आत्मा जिसने अभी शरीर ही नहीं छोड़ा है उसके वाइब्रेशन काम करते हैं, वाइब्रेशन की शक्ति इतनी पावरफुल होती है कि वो जीवन वहां बिता रहा है, और मन बुद्धि के वाइब्रेशन से वो शरीर मां के पेट में तैयार हो रहा है, ये हिसाब किताब है, क्या जैसे मां है गर्भ धारण करती है और गर्भकाल में वो आत्म की स्थिति में रहती है, तो बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा ना, आत्म की स्थिति में रहती है और वो आत्मा का उस समय शरीर स्त्री चोला है या पुरुष चोला है, आत्मा का जो चोला है जिसने गर्भ धारण किया है वो इससे चोला है ना, है अरे जिसने गर्भ धारण किया है वो माता स्त्री चोला नहीं है, तो स्त्री चोला जो है वो स्त्री चोला आत्मिक स्मृति में, पति की स्मृति की देह की स्मृति में नहीं है, तो जो बच्चा पैदा होगा उसमें कौन से संस्कार आएंगे? है आदमी की सुख में रहने के ही संस्कार आएंगे ना। देहभान के मैं देह हूं, पुरुष पने के संस्कार आएंगे? दुर्योधन दुशासन के संस्कार आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि बड़ा हिसाब किताब है। तो बताया कि तुम बच्चे मालिक हो पार्ट बजाने के लिए, चाहे तो लंबे समय तक शांति धाम में रहो, चाहे तो सुख धाम में रहो, क्योंकि तुम बच्चे जो हो ना, कौन से बच्चे, बाबा का कॉन्सेंट्रेशन कौन से बच्चों के ऊपर रहता है, आस कौन से बच्चों के ऊपर है, कितने बच्चों के ऊपर आस है? 8 बच्चों के ऊपर आस है, माना जो अव्वल नंबर 8 है वो ही राजा ही प्राप्त करेंगे, जो ईश्वर की ईश्वत्व की शासन की शक्ति है वो 8 ही प्राप्त करेंगे। 8 के जो बाल बच्चे हैं वो भी तो प्राप्त करेंगे ना, तो वो तो महाराजाओं की लिस्ट के हो गए 8, उनके जो बच्चे हैं वो 108 है, और जो 108 राजाएं हैं उन राजाओं की प्रजा नहीं होगी है? जो 108 राजाएं जब राजा बनेंगे तो उनके विशेष सहयोगी, महामंत्री, सेनापति, ये विशेष अधिकारी होते हैं ना, होंगे या नहीं होंगे है? नहीं, विशेष अधिकारी जो है विशेष प्रजा है, या नंबर 2 की नंबर 3 थर्ड क्लास वोट क्लास की प्रजा है। हाँ, तो 108 के जो बच्चे हैं उनमें जो फर्स्ट क्लास अधिकारी बनते रहेंगे उनके सहयोगी वो हैं 16108, और उनकी संख्या कितनी है? 16108 की संख्या है ना, वो कब तक पूरी होती है, वो कब तक तैयार हो जाते हैं? 16108 देखने में आए कि हाँ उन्होंने स्टेज प्राप्त कर ली, मालिक बने, राजाई प्राप्त कर ली, शासन कर रहे हैं इतने के ऊपर, साथ शूटिंग की बात है, रिहर्सल की बात है, रिहर्सल और शूटिंग 4 युगों की होती है ना, 4 युगों में से जो हेवनली गॉडफादर की दुनिया है वो हेवन सचिव त्रेता की है ना, तो त्रेता के अंत में जाकर के 16108 प्रत्यक्ष हो जाते हैं क्या? और हिसाब है ये सचिव त्रेता में जो 21 जन्म होते हैं, जैसी जैसी प्राप्ति, जैसी जैसी शूटिंग 16108 को होती है सतयुग त्रेता आधा कल्प में, वही हिसाब फिर दूसरे तरीके से द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक चलता है। यहां भी 16108 प्रत्यक्ष हुए प्रिंस प्रिंसेस के रूप में, और वो प्रिंस प्रिंसेस का भी अपना दायरा होता है, उनके ऊपर कंट्रोल करते हैं। तो द्वापर से लेकर के कलयुग के अंत तक भी वो ही कंट्रोल करेंगे, चाहे वो महाराजाओं की लिस्ट के हो 8 हो, जो 8 दिग्पाल गाए जाते हैं, चाहे वो राजाओं की लिस्ट के 108 हो, जो राजाएं गाए जाते हैं, और उन राजाओं की जो नजदीकी फर्स्ट क्लास प्रजा है अधिकारी वर्ग की नजदीक नजदीक जैसे प्रिंस है प्रिंसेस है महामंत्री है सेनानायक है ये अधिकारी होते हैं ना। प्रिंस अधिकारी होता ही नहीं प्रिंसेस भी वो भी अधिकारी तो उनका जो दायरा है प्रजा के ऊपर कंट्रोल करने का वो दायरा जैसे त्रेता के अंत तक प्रत्यक्ष होता है ऐसे ही कलयुग के अंत तक प्रत्यक्ष होता है। क्या मान लो त्रेता की अंत की सीढ़ी है 21वें जन्म की है सतयुग के 8 जन्म त्रेता के 13 जन्म तो 21 जन्म का जो 21वें जन्म की जो सीढ़ी है उसमें जो 16,108 प्रिंस प्रिंसेस प्रत्यक्ष होंगे क्या कंट्रोलर के रूप में वो ही कंट्रोलर के रूप में कलयुग के अंत में जाकर के प्रत्यक्ष होंगे भले ढेर के ढेर देश विदेश में फैले हुए हो लेकिन कंट्रोल तो करेंगे ना कितने देश है दुनिया में और कितने मिनिस्टर होंगे सब देशों को इकट्ठा करो और उनके मिनिस्टर्स को इकट्ठा करो तो संख्या कितनी बनेगी ढेर और इतना ही नहीं मिनिस्टर्स तो विधान पालिका हो गई एक कार्यपालिका होती है जो प्रैक्टिकल में करते हैं बड़े बड़े अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटर उनकी संख्या कितनी होगी ऐसे ही न्यायपालिका में न्यायपालिका में जो बड़े बड़े जज बैठते हैं है? न्यायाधीश बनकर के वो भी तो बड़े ऑफिसर हैं कि छोटे होते हैं तो टोटल मिला के क्या ये 16,108 की संख्या या तो कलयुग के अंत में प्रैक्टिकल में देखने में आते हैं कि इनके हाथ में बड़ी सत्ता हो या तो त्रेता के अंत में देखने में आते तो बताया कि तुम बच्चे मालिक हो माने बच्चे हो तो अनेक हैं या थोड़े हैं तो फर्स्ट क्लास बच्चे 8 के ऊपर नजर है कितने के ऊपर 8 के ऊपर फिर सेकेंड क्लास 108 वो भी तुम बड़े मालिक हो गए ना राजा है ना राजा भी तो स्वाधीन होता है कि किसी के पराधीन होता है स्वाधीन होता है वो भी स्वाधीन बाकी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं राजाओं के तो ये तो पराधीन होते हैं लेकिन फिर अपने दायरे में जो उनकी प्रजा है उनकी उनका प्रभाव जिनके ऊपर है तो उनका आर्डर चलता ही है उनके ऊपर राजा ही करते ही है जैसे राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का बॉडीगार्ड हो फर्स्ट क्लास बॉडीगार्ड में हेड होता है ना कोई तो वो कहीं इंडिया में चला जाएगा और बताएगा कि मैं प्रधानमंत्री का बॉडीगार्ड हूं तो उसको तो कोई कोई तो एकदम चिपक जाएगी आइसिंग ड्राइवर ड्राइवरों में भी कोई मुख्य ड्राइवर होगा तो कहेगा मैं प्रधानमंत्री का मुख्य ड्राइवर हूं ऑल इंडिया में कहीं भी चला जाएगा तो उसको एकदम बड़ा नजर कर जाएगी तो जिनकी उनके ऊपर बड़ी आस्था हो जाती है तो समझ लो उनकी बहुत प्रभावित हो गए माने बहुत बड़ी प्रजा फर्स्ट क्लास प्रजा है उनकी तो ये बताया कि तुम बच्चे क्या है मेरे फर्स्ट क्लास बच्चे हो चाहे राजा ही प्राप्त करने वाले राजयोग से सेकंड क्लास बच्चे हो, चाहे राजयोग से राजा ही प्राप्त करने वाले जन जन्मांतर के थर्ड क्लास बच्चे हो, 16108 की लिस्ट वाले हो, लेकिन हो तो मेरे बच्चे, तो तुम मालिक हो क्या? वो मालिक हो पार्ट बजाने के लिए, जैसा चाहो वैसा पार्ट बजाओ। अभी इस संगम युग में शिव भोलेनाथ के रूप में है, क्या कैसे हैं? शिव भोला भंडारी, इस शिव का टाइटल है, ऐसे नहीं शंकर का टाइटल है। शिव जो है पहला नाम और बाप का नाम शंकर, तो शंकर जो है वो भोला भंडारी नहीं है, इसलिए जब कहते हैं शिव शंकर भोले भाले, इसका मतलब भोले कौन है? जो पहला नाम है शिव वो भोला है, और भाला कौन है? जो दूसरा नाम है शंकर वो ही भाला, क्या हर भाला तीन तीन गुना है उसके हाथ में, क्या ब्रह्मा का भाला कांटा, विष्णु का कांटा और शंकर का कांटा, तीनों कांटे उसी के हाथ में। माना जब त्रिमूर्ति शिव कहते हैं तो किसकी मूर्ति है? बताओ बताओ बताओ, मूर्ति शिव कहते हैं तो किसकी मूर्ति है? तुम बताओ लिखे, हाँ ये तो मूर्तियों के नाम बताए हैं, किसकी मूर्तियां? आत्मा का नाम बताओ। अब आप दोबारा नहीं, अब नहीं, अब दोबारा अगली सारी एग्जाम होगा, उधर माता जी को दे दो। ये त्रिमूर्ति जब शिव कहा जाता है, त्रिमूर्ति शिव, तो कौन सी आत्मा की तीन मूर्तियां हैं? लिखो, नहीं ये भी गलत, न साकार की तीन मूर्तियां हैं, न शिव की तीन मूर्तियां हैं। अब लिखने से कोई फायदा नहीं, अगली साल लिखना, एग्जाम अगली साल होगा। वास्तव में क्या लिखा था? तुमने लिखा, तुमने क्या लिखा था? वो तो मूर्तियों के नाम लिख दिए, अरे हैं किसकी तीन मूर्तियां? कौन, नाम बताओ। शिव मूर्तिमान होता भी है, उसको मूर्ति मूर्ति माने साकार, अमूर्त माने निराकार, उसकी वो मूर्तिमान है फिर। इसने दोबारा में लिख के दिया ना, वो पास हो गया। शिव बाबा की तीन मूर्तियां, किसकी तीन मूर्तियां? शिव बाबा, साकार और निराकार का जब मेल हुआ और निराकार के समान जो साकार बन गया निराकारी स्टेज वाला, तो उस आत्मा की मूर्तियां जिसे कहते हैं शिव बाबा, जिसकी यादगार मंदिर बने हुए, उसका सात्विक यादगार सोमनाथ मंदिर में द्वापर के आदि में बना था वो शिव बाबा। लिंग रूप में है या मूर्ति रूप में? हाँ लिंग रूप में, जिसमें बीच में हीरा जड़ा हुआ था। वो हीरा पत्थर का होता है या नहीं? पत्थर का होता है। तो शिव कोई पत्थर बुद्धि नहीं है। शिव जो है कहते हैं मेरी आत्मा का नाम शिव है, और कोई आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली नहीं है जिसकी आत्मा का नाम है। क्या? जिसे तुम शिव बाबा कहते हो ना, वो शिव बाबा है तो आत्मा भी है, और वो बाबा है माने ग्रैंड फादर भी है, लेकिन ग्रैंड फादर का जो संबंध होता है वो देहधारियों का ही होता है। क्या? ग्रैंड सन और ग्रैंड फादर दोनों ही देहधारी, लेकिन शिव नाम सिर्फ मेरा आत्मा का नाम है, ज्योति बिंदु आत्मा। तो मेरी तो मूर्ति नहीं होती। तो बताया कि तुम बच्चे जो हो, जो शरीरधारी हो, चाहे वो तुम पार्ट बजाने वाले भोगी आत्माओं के बीच अव्वल नंबर बच्चा हो, और चाहे वो 750 करोड़वा बच्चा हो आत्मा रूपी मनुष्य सृष्टि में, लेकिन वो सब मेरे बच्चे, और तुम सब नंबर बार मालिक बनते हो। मालिक माने राजा, राजयोग सीख कर भी बनते हैं। सिखाता कौन है? सिखाता कौन है? हाँ, शिव बाबा सिखाता है। नहीं, सिखाने वाला सुप्रीम टीचर हुआ ना, तो सुप्रीम टीचर की जो सोल है वो भी साकार में आती है तो शिव बाबा कही जाती है, और वही सदगुरु भी है। क्या? सत माने सच्चा, गुरु माने साकार। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल, तो दलाल बिचौलिया है ना, बिचौलिया है किसका? किसका बिचौलिया? निराकार का और साकार का बिचौलिया है। तो तुम आत्मा रूपी जो बच्चे हो, तुम आत्माओं का बाप शिव, और तुम बच्चे जो हो वो मालिक हो पार्ट बजाने के लिए, जो चाहो सो पार्ट बजाओ। क्या शांति धाम में विशेष रहने का पार्ट बजाना चाहते हो? तो शांति धाम का पार्ट विशेष बजाओ, और सुख धाम में विशेष ज्यादा से ज्यादा रहने का पार्ट बजाना चाहते हो तो सुख धाम का पार्ट बजाओ। कौन सा पसंद है बताओ? है कोई भी दुनिया की आत्मा से पूछो, सुख तो सबको पसंद है। भले जो सन्यासी हैं वो आते ही दुख की दुनिया में, उन्होंने सुख की दुनिया देखी नहीं तो उन्हें अनुभव नहीं है। जिन्होंने रसगुल्ला खाया है उन्हें रसगुल्ला खाने का स्वाद लेने का अनुभव है, इसलिए वो रसगुल्ले को पसंद करेंगे। सन्यासियों ने, इब्राहिम ने, बुद्ध ने, क्राइस्ट ने, गुरु नानक ने, शंकराचार्य ने, इन्होंने तो स्वर्ग भोगा ही नहीं है। हाँ, वो जिसमें प्रवेश करते हैं वो देवात्माएं हैं, जो ऊपर से आने वाली धर्म पिताएं हैं द्वैतवादी द्वापर युग से, उनके प्रभाव में आ जाते हैं। कौन प्रभाव में आ जाते हैं? सुनी सुनाई बातों के प्रभाव में आ जाते हैं सबसे जास्ती भारतवासी। ये भारतवासियों की टेंडेंसी बता दी। क्या? चाहे वो अव्वल नंबर के भारतवासी हैं, बताओ
अव्वल नंबर का भारत के दिल में बसने वाला भारतवासी कौन सी आत्मा?
जल्दी जल्दी बताओ, एक सेकंड का पेपर होता है। तो बता,
हाँ बिगाड़ो बिगाड़ो बिगाड़ो, ए तुम दिखा के मतलब लिखा करो, ये नकल कर देता है चार आदमी दिखा था ना, हाँ दे दिया था। सबसे जास्ती नजदीक तो वास्तव में परम ब्रह्म, तो बाद में नाम पड़ता है, है? कि पहले नाम पड़ता है? पहले शिव जब आते हैं एक षष्ठी रूपी रंगमंच पर तो तीन मूर्तियों के साथ आते हैं या परम ब्रह्म नाम लेके आते हैं? है? पहले तीन मूर्तियां या पहले परम ब्रह्म नाम की काम करने वाली ब्रह्मा के रूप में अव्वल नंबर में काम करने वाली शख्सियत है, और जिसका नाम दिया परम ब्रह्म वो कोई अलग से आत्मा है क्या? प्रजापिता के से अलग आत्मा है क्या कि एक ही आत्मा है? एक ही आत्मा तो है। जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश किया तो पुरुष का ना नाम क्या रखा? ब्रह्मा। काम निकालने के लिए ब्रह्मा नाम रखा। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। जो आत्मा माँ के रूप में 500-700 करोड़ मनुष्य षष्ठी रूपी वृक्ष के पत्तों का पालना वो जन्म देने का पार्ट बजाए उसका नाम दे दिया ब्रह्म। पहला पत्ता कृष्ण स्वयं सत्यु के आदि में न सही, वो तो भक्तों की बात है, सत्यु के आदि की कृष्ण की बात भगवान मान लिया, लेकिन वास्तव में शिव का जो पहला बच्चा है जिसे आदम एडम कहा जाता है आत्मा, वो भी उस शिव बाप की गोद में खेलता है पहली पहली बार, तो उसको भी अपनी आत्मा का परिचय कब मिलता है और किसके द्वारा मिलता है? कब मिलता है? संगम युग के आदि में मिलता है या मध्य में मिलता है? लिखो लिखो। हाँ, परिचय है उस आत्मा को अपने अव्वल नंबर पार्ट का षष्ठी रूपी रंगमंच पर। वो अव्वल नंबर पार्ट है ही विष्णु लक्ष्मी नारायण, वो 76 के लिए बोला है ब्रह्मवाक्य मुरली में कि इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? चित्र की ओर इशारा किया, ऊपर जो खड़े हैं प्रकाश के वलय की दुनिया के बीच, ज्ञान प्रकाश का वलय है ना, उनका नाम ही है नारायण। नारायण, नार माने ज्ञान, जल आयन माने घट, जो ज्ञान प्रकाश की दुनिया में ही रहते हैं। तो वो नारायण की तरफ इशारा करके कहा, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ ही कब है? है आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए, माना 1966 की वाणी है, उसमें से 10 वर्ष उल्टा चक्कर घुमाओ और पूरा 5000 सितंबर पूरा चक्कर मत घुमाओ, 10 वर्ष कम छोड़ दो तो कौन सा सन आएगा? 1966। तो बताया आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ जब इनका जन्म हुआ, तो 76 में बता दिया बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब हुआ? उस आत्मा को, वो दोनों आत्माओं को अपने स्वरूप आत्मा का पार्ट का प्रत्यक्षता रूपी जो जन्म है, ये एहसास कब हुआ कि मैं कौन सी आत्मा हूं या हम कौन सी आत्मा है? फटाफट लिख लेगा, 76 में हुआ। ये घोषणा कर दी सारे ब्राह्मण परिवार ने, ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने मनाया 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, मनाया धूमधाम से। लेकिन जाना किसी ने नहीं, वो आत्माओं को अंदर अंदर एहसास हुआ, किनको? लक्ष्मी और नारायण। वो लक्ष्मी नारायण नहीं जो सत्यु के आदि में जन्म लेते हैं पहले पत्ते के रूप में, उनकी बात नहीं है। पुरुषोत्तम संगम युग में शिव बाप आकर के जो ज्ञान देते हैं, ईश्वरीय ज्ञान, सत्य ज्ञान, उस सत्य ज्ञान के आधार पर जिन्होंने अपनी आत्मा के पार्ट को पहचाना, वो लक्ष्मी नारायण की बात। और उनमें भी मुख्य प्रोमिनेंट आत्मा कौन है लक्ष्मी नारायण? नारायण। तो जो नारायण है वो ही बचपन में कृष्ण कहा जाता है। तो वो जो चित्र दिखाते हैं, चित्रकारों ने चित्र बनाया कि बुद्धे बाबा शिव की गोद में कृष्ण बच्चा बैठा हुआ है, इस कलयुग के अंत में ये चित्र निकले हैं, पहले ये चित्र नहीं थे शास्त्रों में। मान जब प्रैक्टिकल पार्ट चलता है तो चित्रकारों की बुद्धि में भी चित्रण हो जाता है। तो अब ये बताओ कि ये जो गोद में कृष्ण बच्चा बैठा हुआ है, ये किससे जन्म लेता है? इसकी माता कौन है? जल्दी से नाम बताओ। किससे किससे जन्म लेता है? हाँ, जब प्रजापिता नाम था, अहम बीज प्रदपिता, मनुष्य सृष्टि का बीज डाला था, तो उस समय ज्ञान था? था तो कैसे लिख दी? जगदम्बा से मिला ज्ञान। ज्ञान माने समझ, समझ बुद्धि अकल। ज्ञान ज्ञान माने जानकारी, अपने स्वरूप की जानकारी जगदम्बा से मिली, वो तो हो ही नहीं सकता। जगदम्बा ने यज्ञ के आदि काल में थोड़ी जानकारी दे दी। यहां कहते हो 76 में जानकारी हुई उस आत्मा को अपने स्वरूप की, और अभी कह दिए यज्ञ के आदि में जगदम्बा ने, तो गलत हो गया ना? हाँ ना ना ना, अगली साल अगली बार दोबारा एग्जाम अगली बार होता है। वो जो गोद में बैठा हुआ बुद्धे की गोद में अनुभवी सबसे जास्ती आत्मा है, उसकी गोद में बैठा हुआ जो कृष्ण बच्चा दिखाया है, उसको अपने स्वरूप की पहचान किसके द्वारा होती है, किसके मुख से होती है? हाँ, तो ये कोई नाम है बड़ी अम्मा, अम्मा के द्वारा बच्चे को परिचय मिलता है क्या कि तुम इस बाप के बच्चे हो? तो लिखा है लक्ष्मी, लक्ष्मी जो है वो नई दुनिया की महारानी है, पुरुषोत्तम संगम युग में वो विश्व की महारानी है। बच्ची किसकी है? उसको अपना परिचय किसके मुख से मिलता है? जिसके मुख से परिचय मिलता है वो ही उसकी अम्मा हुई ना, तो किसके मुख से परिचय मिला? लक्ष्मी नारायण दोनों का इकट्ठा है तो जन्म है, तो प्रत्यक्षता रूपी जो जन्म है अपनी आत्मा की पहचान वो किस मुख से मिलती है, वो मुखधारी का नाम बताओ। एक सेकेंड में लिखना है, देर नहीं लगानी है, देर लगी माने फिर हाँ, कौन सा ये जो अगर ब्रह्मा तो पांच मुख दिखाए गए हैं ब्रह्मा के, वो एक ही अम्मा से जन्म लिया होगा कि कार्तिकेय हो गया, छह अम्मा से जन्म लेने वाला थोड़ा, छह अम्मा तो पालने वाली है। दादा लेखराज ब्रह्मा से मुख से उस आत्मा ने जो ज्ञान सुना, उस ज्ञान के आधार पर शिव का ज्ञान सुना ना, तो शिव हुआ बाप और दादा लेखराज ब्रह्मा हुई माँ, और उन दोनों के द्वारा जो ज्ञान मिला, जानकारी मिली, ज्ञान माने जानकारी, उससे उनको पक्का एहसास हो गया कि मेरा बाप ये है और मेरी अम्मा दादा लेखराज ब्रह्मा है, जिनसे मुझे अपने स्वरूप का परिचय। तो बताया तुम बच्चे मालिक हो पार्ट बजाने के, चाहे तो जो मनुष्य सृष्टि में 500 700 750 करोड़ बच्चे हैं उनमें अव्वल नंबर का पार्ट बजाने वाले बन जाओ मालिक, और चाहे तो मध्य के बच्चों में पार्टधारी बन जाओ, और चाहे तो चाहे तो लास्ट के पूर्व के बदल, ये तुम्हारे ऊपर है क्या। तुम मालिक बन सकते हो सब के सब, 500-700 करोड़ सारे मालिक बन सकते हो, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे पुरुषार्थ के ऊपर है, तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर है कि तुम अव्वल नंबर में पास होते हो या मध्यम में या लास्ट, बाकी मालिक तो बन सकते हो। अभी घर छोड़ करके यहां आते हो पाठ बजाने के, क्या तुम सब बच्चे जितने भी 500-700 करोड़ बच्चे हो आते कहां से हो? कहां से आते हो? नाम बताओ। परदाम क्या कर दिया? क्या लिख दिया? परदाम। परमधाम। परमधाम। परमधाम से आते हो पार्टी बजाने के लिए? अरे दुनिया में जो बच्चा पैदा होता है वो कहां से आता है पार्टी इस दुनिया में पार्टी बजाने के लिए? कहां से आता है? लिखो लिखो लिखो। ये चाहिए नहीं, क्या भाषा दे देता है समझ नहीं आ रही। अरे वो सातवां को उस शरीर हरि को कोई नाम कहा जाता है, नाम माता से आता है ना, बच्चा माँ से आता है ना, तो ये भी तो कोई माँ होगी ना है? वो माँ बाप के मुकाबले जड़त्व में ही बुद्धि वाली होती है या बाप जैसी तीक्ष्ण बुद्धि होती है, ज्यादा चैतन्य बुद्धि होती है नहीं होती है। तो जो परम ब्रह्म नाम है वो जड़त्वमय तत्व है या चैतन्य तत्व है? तत्व माने सार, जैसे शिव बाप कहते हैं कि मेरी दो प्रकार की प्रकृति है, गीता ने भी बोला परा प्रकृति परे से परे प्रकृष्ट शक्ति वाली और दूसरी अपरा प्रकृति नीचे थोड़ी नीची नीची स्टेज। तो जैसे शिव की दो प्रकार की रचनाएं हो गई, जैसे शास्त्रों में कह दिया अदिति और अदिति, वास्तव में पुरुष आत्मा को कहा जाता है वो है परम पुरुष शिव, और उसकी दो रचनाएं हैं, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। तो परे ते परे स्टेज वाली प्रकृति जो है वो, और नीची किस्म की प्रकृति है वो कौन कौन है? नाम दिया परम ब्रह्म, क्या नाम दिया परम ब्रह्म माने बड़े से बड़ा ब्रह्म, परे से परे ब्रह्म कौन हुआ है? परे से परे ब्रह्म कौन हुआ? इसमें तो परे से परे ब्रह्म जो शिवलिंग दिखाते हैं उसमें ज्योतिबिंदु भी है और साकार बड़ा रूप भी है। तो जो साकार बड़ा रूप है वो है नीची प्रकृति, जड़ तत्वों का सार, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इन पांच जड़ तत्वों का सार। और ये जड़ तत्व जो शरीर तैयार होता है वो उसका कारण कौन है? जो कोई अंधा कोई काना कोई लूला पैदा होता है आत्मा, तो ये है मेरी अपरा प्रकृति, परा प्रकृति चैतन्य आपके किसके जो है। क्या दो नाम हो गए? पहले था ब्रह्म, दूसरा हुआ परम ब्रह्म। मैं किस पर फिदा होकर आता हूं? कोई आत्मा है जिसके पार्ट पर फिदा होकर आता है कि उस आत्मा ने जन्म जन्मांतर जो पार्ट बजाया है वो मेरी श्रीमत के अनुकूल बजाया है कि प्रतिकूल पार्ट बजाया है तो फिदा होता हूं? शिव सुप्रीम सोल कौन सी आत्मा पर फिदा होता है? है शिव सुप्रीम सोल जिस आत्मा पर फिदा होता है उसका नाम क्या देता है, किस पर आशिक होकर आता है? परम ब्रह्म नाम पहले होता है कि परम ब्रह्म नाम बाद में पड़ता है? दादा मेघराज पहले या उसका नाम बाद में दिया, नामकरण बाद में हुआ, पहले कौन है? दुनिया में भी बच्चा पैदा होता है उसी समय नामकरण होता है क्या है? जब छठी होती है तब नामकरण किया जाता है। ऐसे ही है कि शिव है जो फिदा होके आया, आशिक होकर आया, वो कौन सी आत्मा है इस सच्ची रूपी रंगमंच की जिस पर फिदा होकर आया? मुरली में नाम क्या बोला? किस पर फिदा होता है? अरे उस देश का नाम नहीं है। हाँ, एक होता है जड़ देश और एक होता है चैतन्य देश। चैतन्य देश है शरीरधारी आत्मा और जड़ देश है ये भारत का जो नक्शा दिखाते हैं जिसमें जमीन पहाड़ नदियां दिखाते हैं वो है जड़। तो वो शिव आता है, वो चैतन्य आत्मा पार्टधारी के ऊपर फिदा होकर आता है ना, है? रथ जो चुनता है, ज्ञान अर्जन करने वाले अर्जुन का रथ चुनता है, जिस ज्ञान को धारण करके वो बड़ा भाग्यशाली बनता है दुनिया का, है? विश्व का मालिक बनता है ना। तो जिसमें आता है उसका नाम है भारत। किस आधार पर नाम पड़ा? काम के आधार पर। क्या काम किया? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने रहने वाला, लगा रहे। क्या? रत माने लगा रहे। तो ज्ञान की रोशनी में जो जन्म जन्मांतर लगा रहता है, स्वर्ग में तो देवताएं होते ही आत्मिक स्थिति स्वस्थिति वाले धरते, इसलिए जो स्वर्ग के देवताएं हैं वो तो सदैव ही जीवन में आत्मा की रोशनी में रत रहते हैं। लेकिन द्वैतवादी द्वापर युग से भी जब दूसरे दूसरे धर्म के ताए आते हैं, दे अभिमानी पांच तत्वों वाले पंच भूतों के भौतिक शरीर को महत्व देने वाले, तो भी वो आत्मा उन धर्म पिताओं से प्रभावित नहीं होती। क्या? उसका नाम पड़ता है भारत। चाहे व्यास के रूप में वेद रचि, मनुष्य के रूप में द्वापर के आदमी 2500 वर्ष पहले, चाहे बाद के आरण्यक बने, शतपथ ब्राह्मण आदि बने, उनका रचयिता बने, और चाहे पुराण बनाए, महाभारत पुराण, भागवत पुराण, इस ज्ञान में ही रत रहती है। चाहे द्वापर में बाल्मीक के रूप में रामायण लिखी, क्या? क्योंकि वो है ही पुरुषोत्तम संगम युग में राम वाली आत्मा। राम नाम क्यों पड़ा? रम्यते योगिनो यस्मिन् इति राम। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, आनंद मनाते हैं, जिसकी याद में, वो है राम। राम किसका नाम? जिसकी याद में योगी लोग रमण करते हैं वो है राम। तो कौन आत्मा हुई? बोला ब्रह्मवाक्य मुरली में बोला त्रेता वाला राम नहीं, जो शास्त्रों में नाम दिया है त्रेता वाला राम, 14 कला का नहीं, कौन सा राम है? जिसकी याद में योगी लोग रमण करते हैं, माना खेल खेलते हैं। तो खेल खिलाने वाला होगा या नहीं होगा? है? खेल खिलाने वाला होगा तो खुद भी खेल खेलेगा या नहीं खेलेगा? है? खेलेगा ना? तो वो आत्मा जिसे योग की वो शक्ति प्राप्त है, जिससे ज्यादा योग की शक्ति दुनिया में और किसी आत्मा को प्राप्त नहीं है, उसको कहते हैं योगी, योग लगाने वाला। कोई आत्मा है या सुप्रीम सोल है? आत्मा है। जो सुप्रीम सोल से योग लगाने वाली अव्वल नंबर है। क्या? योगियों में सबसे ऊंचा योगीश्वर है, उसको टाइटल मिलता है योगियों का ईश्वर। अच्छा, अगर गोद में बच्चे के रूप में कृष्ण के रूप में चित्रों में दिखाया जाता है तो वो भी संगम युग के यादगार है। गोद में बैठा बैठा योग लगा रहा है तो जो बड़े से बड़ा योगी है वो ही सारे संसार को योग लगाना सिखाता है। खुद भी बड़ा योगी है, सिखाने वाला भी सदगुरु है। क्या? तो वो सदगुरु जो है किसी योगी से सीखता है? किस योगी से सीखता है नाम बताओ? ये ऊपर इशारा कर रहा है इसलिए लिखो। शिव बिंदु, जिसकी बिंदी का नाम शिव है, उससे वो किससे योग लगाता है? उससे बड़ा कौन है? जैसे शंकर है जगत पिता, मनुष्य सारी मनुष्य सृष्टि का पिता, जगतम पितरम कहा जाता है, जगत पिता है ना। तो वो तो बड़ा योगी है और योग बल के आधार पर प्राप्ति भी करता है। योग से, योग माने शक्ति, योग की शक्ति से प्राप्ति करता है। विष्णु की बात सही, शिव ज्योति बिंदु किससे योग लगाता है और क्या शक्ति प्राप्त करता है? है? और कब लगाया योग? उसको कहते हैं सदाशिव। उसे किसी से योग लगाने की दरकार है ही नहीं। वो जिसमें प्रवेश करता है, है? उसको ज्ञान देता है, शक्ति नहीं देता योग की। इसीलिए बताया क्या, तुम सबको समझा सकते हो कि तुम नई दुनिया के मालिक बन सकते हो, चाहो तो, चाहो तो शांति धाम के मालिक बन सकते हो, चाहो तो दोनों के मालिक बन सकते हो। क्या? मैं जो बोलने वाली आत्मा है ब्रह्मा के अंदर, ब्रह्म वाक्य बोलती है, वो आत्मा शांति धाम की मालिक बनती है, सुख धाम की मालिक बन के बैठती है, है? न मैं शांति धाम का मालिक न मैं सुख धाम का मालिक। शांति धाम में तो आत्मा आत्मा सब भाई भाई, सब आत्मिक स्थिति में, कोई ऊंचा नहीं कोई पद में नीचा नहीं। वास्तव में इस सृष्टि की बात है, इस सृष्टि में तुम बच्चे नंबरवार शांति धाम ब्रह्मलोक को इस सृष्टि पर उतार देते। क्या ब्रह्मलोक को इस सृष्टि पर उतार लेते हो? तुम बच्चों में जो अव्वल नंबर बच्चा नारायण है, वो नारायण बच्चा अपनी जो दुनिया बनाता है वो शांति धाम की दुनिया, ब्रह्मलोक की दुनिया का वलय अपने चारों ओर बनाए हुए है। कैसा वलय? आत्मिक स्टेज वाला वलय, जहाँ आत्माएं आत्मिक स्टेज में बिंदु रूप स्टेज में रहती है, नो संकल्प एटॉल। लेकिन बनाने वाले बच्चे नंबर वन जो बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में कि तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, तो कोई बच्चा तो अव्वल नंबर होगा। तो जो आदम है पहला आदमी इस सृष्टि का, वो पहचान जब से मिलती है कि मैं आत्मा ब्रह्मलोक की वासी हूँ ओरिजिनली है, और उस ब्रह्मलोक को मैं इस सृष्टि पर उतार सकती हूँ, तो स्मृति के आधार पर वो अपने ही अंदर अपने ही शरीर में ब्रह्मलोक का अनुभव कर। ज्योति बिंदु आत्मा जो लिंग रूप है, लाल लाल लाइट का गोला सोमनाथ मंदिर में बना हुआ था, पत्थर बुद्धि, पत्थर का पत्थर भी कैसा, काला या हरा या नीला, लाल पत्थर। लाल रंग जो है किस बात का सूचक है? है लाल रंग क्रांति का सूचक है, वो परमधाम की स्टेज जिसकी बनेगी वो इस सृष्टि पर क्रांति ला देगा। क्या क्रांति? के आधार पर सारे संसार में शांति फैल जाती, सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं में क्रांति आ जाती, अंत की स्टेज में पहुंच जाती, जो आदि सो अंत आत्मी की स्टेज 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं धारण कर लेती। तो बोला अभी अपना परम धाम ब्रह्मलोक छोड़ करके यहां इस सृष्टि पर आते हो, पार्ट बनाएंगे। क्या इस सृष्टि पर किसी आते हो? आत्मिक स्टेज को छोड़ करके यहां आते हो पार्ट बनाने के लिए। पार्ट शरीर के द्वारा बजेगा या बिना शरीर के बजेगा? रंगमंच पर पार्ट बजाने जाते हैं तो जाके नंगे पड़े हो जाते हैं कि भांति भांति के कपड़े पहनते हैं, है? 84 जन्म है तो 84 जन्मों में मैक्सिमम 84 जन्मों में 84 शरीर रूपी कपड़े बदलते हैं। तो तुम आत्मा रूपी जो पार्ट धारी हो वो सच्ची रूपी रंगमंच पर आकर के पार्ट बजाते हो। क्या ये भी पार्ट है? ये भी पार्ट है क्या? तुम जो पार्ट बजाते हो वो संगम युग में नून हो रहा है, पुरुषोत्तम संगम युग है इसका नाम। अभी घर छोड़ करके यहां आए हो। क्या जो ब्रह्मलोक है, ब्रह्म माने बड़ा, माने मां, ब्रह्मा बड़े से बड़ा घर, ब्रह्मा का घर, क्या इसकी दादी अम्मा होती है, इसका घर छोड़ के आ गए। यहाँ क्या है, दादी अम्मा से भी बड़ी अम्मा कौन होती है, परदादी अम्मा। परदादी भी टाइटल मिलता है किसी को? नहीं, पुराने जमाने में तो परदादी भी जिंदा रहती, दादी भी जिंदा रहती है, अम्मा भी जिंदा रहती, और अम्मा की बहू भी जिंदा रहती। क्या कितनी पीढ़ियों की हो गई, बहू अम्मा, बहू की सासू में, उनकी भी दादी में, उनकी भी है, उनकी भी परदादी में। देखो चार चार पांच पांच पीढ़ियों की जिंदा है। आज भी परंपरा भक्ति मार्ग में चल रही है। जो पंडित होते हैं ना भक्ति मार्ग में, शास्त्रों में बड़ा शास्त्र है महाभारत, उसमें कोई पंडा है जिसका नाम दिया है मिलता जुलता है, जिसके बच्चे हुए पांच पांडव, किसके बच्चे है, पांडव के बच्चे। वास्तव में नाम है होना चाहिए पंडा, लेकिन ये बिगड़ा हुआ नाम है, है? असली नाम है पांडव के बच्चे पांडव। तो पंडा क्या करता है, पंडा रास्ता बताता है तीर्थ स्थान जाने का, तीर माने किनारा, था माने स्थान, ऐसा स्थान जाके दिखाता है जहां तुम एक ठिकाने पे लग जाओ परमानेंट, क्या इधर उधर भटकने की दरकार नहीं। तो वो ऊंची के ऊंचा ठिकाना बाप ने बताया, शिव बाप ने, या तो शांति धाम जाना चाहो तो शांति धाम जा सकते हो, रह सकते हो लंबे समय तक, सुख धाम जाना चाहो तो लंबे से सुखधाम भी रह सकते, दोनों में रहना चाहो तो सुखधाम में भी रह सकते, दुखधाम में भी रह सकते। अच्छा ये कभी फिर बताएं कि क्या कोई आत्मा ऐसी भी हो सकती है जो लगातार सुखधाम में ही रहेगा निरंतर, कोई ऐसा भी भाग्यशाली रहता हो सकता है? जिस शरीर रूपी रथ में जो रथ है सार रूप में पांच तत्वों का भी सार है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश का जो सार, ऐसा तत्व जो कभी खत्म नहीं होता, क्या तीनों काल में भी खत्म नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो सत्य है, सत्य का कभी विनाश नहीं होता, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य। तो वो शरीर रूपी सत्य की यादगार लिंग बड़ा में और उसका छोटा रूप आत्मा भी, ये दोनों ही सत्य हैं। जैसे वैज्ञानिक भी मानते हैं एलिमेंट कभी नष्ट नहीं होता, तो ऐसे ही ये जो शरीर है जिसको जिस शरीर से पैदाइश होती है उस शरीर को ब्रह्मा नाम दिया जाता है। ब्रह्मा नाम धारियों में बड़े से बड़ा मुख परम ब्रह्म कहा जाता है, वो परम ब्रह्म या बड़े के बड़ी मां, ऐसे बड़े के बड़ी मां, तीन दुनिया है ना, बड़ी दुनिया 500-700 करोड़, उससे स्वर्ग की दुनिया, छोटी दुनिया 10 करोड़ की, 8-10 करोड़ की स्वर्गीय दुनिया है ना, 2 नंबर की जिसे स्वर्ग कहा जाता है, और उससे भी एक छोटी दुनिया है जो शूटिंग काल में तैयार होती है, रिहर्सल काल, जहां सारी दुनिया के बीज तैयार होते हैं, कितने भी नहीं, 9 लाख तो होते हैं सत्यु के आदि के जन्म में, लेकिन उससे भी पहले कोई जन्म है, कोई पीढ़ी वाला पहली पीढ़ी, यहाँ 4.5 लाख ही असली हैं, जो अपने शरीर से पार्ट बजाते हैं, बाकी सत्यु में जन्म लेने वाले तो उनके बुद्ध रूपी पेट से जन्म लेते हैं और यहाँ संगम में बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं, उनकी बात है। तो 4.5 लाख जो आत्माएं हैं वो ही है जो रुद्र यज्ञ रचे जाते थे द्वैतवादी द्वापर के आदि में 2500 साल पहले, तो उनमें लाखों की तादाद में शालिग्राम बना लिया। लाखों की तादाद मतलब कोई सेठ होता था 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई ऐसा भी सेठ हुआ होगा जिसने 4 लाख शालिग्राम बनाए हैं क्या? लेकिन उनमें फर्स्ट क्लास है क्या जो कहे जाते हैं ब्राह्मण सो पक्के देवता 1 लाख। उन 1 लाख में भी 2 प्रकार के हैं, एक है कभी कन्वर्ट न होने वाले पक्के रुद्रमाला के मां के बीज, दूसरे वो हैं जो विजय माला के बीज हैं, है? पहले चंद्रवंशी होते हैं, ज्ञान चंद्रमा से जन्म लेते हैं, फिर जैसे कन्या की शादी हो जाती है ऐसे वो राधा चंद्रवंशी से कन्वर्ट होकर के सूर्यवंशी लक्ष्मी बन जाती है। ओ द्वैतवादी दुनिया में 2 मतें तो जरूर पैदा करेंगे क्या? ब्रह्मा अपनी मत को विसर देगा, वो भी एक देहधारी धर्म गुरु। अब्राहिम आएगा, वो अपनी मत को सिर देगा, नहीं ज्ञानेंद्रिय संतान पैदा ही नहीं हो सकती, वो तो कर्मेंद्रियों से ही कर्म करेंगे तभी संतान पैदा होगी। तो ऐसे जो जो आएंगे वो अपनी द्वैतवादी मत दूसरी मत जरूर घुसर देंगे, उनको कन्वर्ट होने वाले द्वैतवादी कहा जाता है, एक के आधार पर बिल्कुल नहीं चलेंगे, विश्वास ही नहीं उनको। इसलिए गीता में लिखा हुआ है क्या कि जो अनिश्चय बुद्धि आत्माएं होती हैं उनके 2 मतें होती हैं, और जो निश्चय बुद्धि आत्मा होती है उनकी एक ही बात रहती, एक ही मत रहती। चलो बहुशाखा अनंताश्च, बहुत शाखाओं वाले, बहुशाखारंताश्च बुद्धि अव्यवसायिनां, जो अनिश्चय बुद्धि होते हैं उनकी बुद्धि बहुत शाखाओं वाली, इधर कन्वर्ट हो जाओ ये अच्छा नहीं, इधर कन्वर्ट हो जाओ ये अच्छा नहीं, इसको बाप बनाओ ये अच्छा बाप, जैसे आर्य समाज हर धर्म से कन्वर्ट होता चले आए, नीचे उतरते उतरते किसी धर्म पे उनको आस्था नहीं रही, धर्म द्वैक्षराज, हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं, सब झूठे हैं। क्या किया जाए, ऐसी दुनिया बनी हुई है।